नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और माओवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की भूमिका की सराहना की। कहा, दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी की प्रशंसा कर रही है। अमेरिका और ईरान आज रोम में परमाणु समझौते पर पांचवें दौर की वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय निशानेबाज राइजा ढिल्लों ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की स्केट स्पर्धा में रजत पदक जीता। और IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत और के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करना महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने निवेशकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने का आग्रह किया और कहा है कि पूर्वोत्तर अब अवसरों की भूमि बन रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे विविध क्षेत्र है और ये विविधता देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन ये विकास के अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र को अवसरों की भूमि के रूप में उजागर करना और वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है।
आज हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं, ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके प्रयासों से वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और संपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब है और आज दुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता की प्रशंसा कर रही है। श्री शाह ने कहा है कि सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और खुफिया एजेंसियों की अचूक सूचना तथा सशस्त्र बलों द्वारा घातक कार्रवाई के कारण ये संभव हुआ है। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि बीएसएफ और सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई में महान वीरता और रक्षा की सच्ची शक्ति प्रदर्शन किया। श्री शाह ने कहा है कि बीएसएफ दुनिया का सर्वोच्च सीमा सुरक्षा बल है। गृहमंत्री ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा में बीएसएफ की भूमिका की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने की सहमति के माध्यम से पाकिस्तान के साथ संघर्ष को फिलहाल सुलझा लिया है। डेनमार्क के एक समाचार चैनल के दिए साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का कारण ये संभव हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच आज इटली की राजधानी रोम में पांचवें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक चार दौर की वार्ता हो चुकी है। इनमें से तीन वार्ताएं ओमान की राजधानी मस्कट में और एक रोम में हुई। ये वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध और अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए हो रही है। ये वार्ता ओमान द्वारा कराई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को रोकने की मांग करता रहेगा तो कोई परमाणु समझौता नहीं होगा। आज रोम में दोनों देशों के बीच पांचवें दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से पहले उन्होंने ये टिप्पणी की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज शाम सर्वदलीय सांसदों के शिष्टमंडल को उनकी विदेश यात्रा के बारे में आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व में जापान गए सर्वदलीय शिष्टमंडल ने आज टोक्यो में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के आतंकरोधी अनुसंधान समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराया है। प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों और राजनयिकों से भी बातचीत की। इस दौरान श्री झा ने कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रही आतंकवाद गतिविधि का पाकिस्तान से कोई ना कोई संबंध रहा है और अब ये सामान्य सी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय नागरिकों के साथ कुछ होता है तो भारत उसका बदला जरूर लेगा। इससे पहले डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना के साथ आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज परमवीर चक्र से अलंकृत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में श्रीनगर वायुसेना अड्डे की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। पिछले दो वर्षों में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए लगभग 3,000 अग्निवीरों ने ऑपरेशन सिंदूर में आगे बढ़कर नेतृत्व किया। अग्निवीरों में से अधिकतर 20 साल के युवा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा की थी। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए युवाओं ने 4 दिन की सैन्य जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। वायु रक्षा इकाई में लगभग 200 अग्निवीर मौजूद थे। अग्निवीर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ। आकाश तीर दल अग्निवीरों की सहायता से संचालित किया गया था। अग्निवीर सैनिकों ने पश्चिमी मोर्चे पर तैनात वायु रक्षा इकाई में भी धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाया। इनमें गनर, ऑपरेटर फायर कंट्रोल, ऑपरेटर रेडियो और बंदूकें और मिसाइलें लगी हुई भारी भरकम वाहनों के चालक भी शामिल थे। मौसम विभाग ने दक्षिण कोंकण, कर्नाटक के तटीय और घाट क्षेत्रों, मध्य महाराष्ट्र तथा गोवा में तेज वर्षा का रिकॉर्ड और रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जनामणि ने कहा है कि पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र गोवा तट के पास बना हुआ है और इसके और गहरे दबाव में बदलने की अनुमान है। इस बीच आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आंधी, तेज हवाएं और बिजली कड़कने के साथ ही हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 13 जिलों ईस्ट कमिंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, क्रादादी, शियोमी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, दिवांग वैली, अंजाव, चांगलांग और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के साथ रेलवे, वंदे भारत और नमो भारत जैसी नई ट्रेनें चलाने में आत्मनिर्भर हो रहा है। मुंगेर के जमालपुर में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में 50,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क की विद्युतीकरण किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड में बोकारो में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बारे में मीडिया की खबरों पर मामलों का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने घटना की निंदा की है और 3 दिन के अंदर झारखंड के पुलिस महानिदेशक से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद देना सुनिश्चित करे तथा घटना की निष्पक्ष और समयबद्ध जाँच करे। निशानेबाजी में ओलंपियन राइजा धिलो ने जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की सर्किट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। धिलो ने 60 शॉट के फाइनल में 51 निशाने लगाए। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज रात पोलैंड के चोर्जोव में जानुस कोसिंक्स की मेमोरियल 2025 टूर्नामेंट की भाला फेंक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।